Summary, what they say? Summary in Hindi. Essence is Saramsham. Essence is Sar or Saramsh. Both are different. You understand essence means we take the essence. Summary means we condense everything. Condense everything. We should have some dictionary. In the dictionary we should have. You can maybe in the internet also we will have dictionaries. Better to have hard copy. How we will write now? Summary of Bhagavad Gita. You know what is the word for summary in Hindi? Our essence? Sar or Sar और सारांश दोनों अलग है.
सारांश means point.
Essence. और सार मतलब संक्षिप्त. संक्षेप. भगवद गीता का संक्षेप वे विल से या समरी ऑफ भगवद गीता मीन्स भगवद गीता का संक्षेप दैट विल बी गुड. हाँ
ओके.
भगवद गीता ओ ना उसके बाद कितना हुए थे कल? भगवद्गीता का सार या गीता सार हम लोग लिख सकते हैं, है ना? गीता सार है ना. और भगवद गीता के तीन विभाग तेरहवा गीता सार, चौदह भगवद गीता का संक्षेप, पंद्रहवा भगवद गीता के तीन विभाग और सोलहवा भगवद गीता का निष्कर्ष कंक्लूजन. सो मेनी थिंग्स. एसेंस समरी कंक्लूजन. नो वन हैज स्टडीड आई थिंक लाइक दिस राइट बिफोर.
ओके आशा करते हैं.
ठीक है. हम लोग इसके पहले चर्चा कर रहे थे भगवद गीता में कई सारे विषयों के बारे में चर्चा कर रहे थे और इन सभी का उद्देश्य क्या है. उस दिन अखल बता रहा था मैं कि जब हम लोग कई सारे विषयों के बारे में सुनते हैं तो वो इधर उधर भ्रमित हो सकते हैं, है ना। लेकिन इसलिए हमें उद्देश्य को जानना चाहिए, क्या उद्देश्य है। जैसे कल बता रहा था मैं, वेद और खलपतरु के समान है। जो कुछ भी चाहिए आपको जानने के लिए, जो कुछ भी आप इच्छा करते हैं वो सब उसमें है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जो भी हो, मेडिसिन, औषधि का विज्ञान, जो भी चाहिए जानना चाहते हैं वो वेदों में है। लेकिन हम लोग उद्देश्य नहीं जानते हैं तो हम लोग उसमें ही भ्रमित हो सकते हैं। कल बता रहा था ना, ज्यादा से ज्यादा वेदों में भी भौतिक बातें ही बताए गए, अज्ञानी है। लेकिन बहुत सारा चीज भी जानना भी चाहिए, वो भी जरूरी है। जैसे कल वो प्रश्न था ना, कृषि को कैसे करना चाहिए, वो सब, वो भी है, सब है वेदों में। हमें उद्देश्य जानना चाहिए। और उसके बाद जब हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारे विषय है भगवद गीता में, सार भी हमें जानना चाहिए, गीता सार, जो कल या परसों हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, तो गीता सार करके कुछ और वो लिख के, है ना, सब प्रचलित है समाज में, जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, ऐसे लोग लिखते हैं। हाँ, तो ऐसे वो लोग गीता सार बोलते हैं। तो वास्तविक सार क्या है गीता का? That is what conclusion or summary it is. That will come in conclusion, no? Sarvadharma Parityaja, that is Nishkarsh. 16th point. Yeah, it may come in summary. We will see that. वो उद्देश्य हुआ ना? या उद्देश्य क्या था भगवद गीता का बताइए, थोड़ा रिविजन करेंगे। अंधकार या अज्ञान से मुक्त होना, अज्ञान, अंधकार का अर्थ है अज्ञान, या अज्ञान को ही अंधकार कहा गया, ज्ञान को प्रकाश कहा गया। अज्ञान से मुक्त कराना भगवद गीता का उद्देश्य है। तो उसका अर्थ क्या है, दो स्तर में कैसे होता है वो? भगवान कृष्ण के साथ जो संबंध है उसको स्थापित करो, तो ये उद्देश्य हुआ। तो सार क्या है फिर, किसी को पता है वेद शास्त्रों का सार क्या है? That is object of the Vedas. Okay, that is that is one aspect of that सार। और भी कुछ है वो सही है, कृष्ण, वो एक वन एस्पेक्ट ऑफ सेंस ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स। देर आर अदर टू एस्पेक्ट्स, वो उद्देश्य में आ गया। देहात्म बुद्धि मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, असत के वातावरण में हम, असत मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, एक क्षणिक के वातावरण। और हमारे सोच बहुत ही क्लियर होना चाहिए, प्रसाइज एंड क्लियर, समझ में आ रहा है? प्रसाइज एंड क्लियर मीन्स ऐसे ही कुछ बोल सकते हैं। और विशेष करके आप बाहर वालों को प्रवचन कर रहे हैं तो लोग, उनको अच्छा ही लगता है, आप जो भी बोलेंगे वो अच्छा ही लगता है, लेकिन हम लोगों को सही सही बोलना है। ऐसा कुछ आप बोलते ही रहेंगे, उद्देश्य भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सार भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सब कुछ है। लेकिन कुछ समय के बाद वो लोग भी बोर हो जाएंगे, प्रभु जी बार बार वही बोल रहे करके। निष्कर्ष मतलब ग्रंथ का अंतिम जो चीज है उसको निष्कर्ष कहते हैं। सार मतलब वह सबका निचोड़ लेते हैं। सार का भी निष्कर्ष होता है। समय समझ में आएगा? ठीक है, हम हिंदी भाषा को समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। वेद शास्त्रों का क्या सार है? थपन थपान थपन थपान मिश्र, थपन मिश्र या थपान मिश्र, थपन मिश्र आप जानते हैं ना कौन थे? वो चैतन्य महाप्रभु के एक प्रमुख अनुयायी थे ना, तो बनारस में रहा करते थे ना। उनका उनका पुत्र ही रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। पहले वो पूर्व बंगाल में रहा करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु अभी आंदोलन हरे कृष्ण आंदोलन शुरू नहीं किए थे, अभी भी वो गृहस्थ, अभी भी विद्या रस को आस्वादन कर रहे थे महाप्रभु, तो धन कमाने के लिए वो पूर्व बंगाल में जाते हैं। जब पूर्व बंगाल में गए, वहाँ पर ये थपन मिश्रा सभी वेद शास्त्रों को अध्ययन कर रहे थे। वो इतना अध्ययन किया उन्होंने, फिर भी उनको वेद शास्त्रों का सार क्या है उनको पता नहीं चला, तो इसलिए बहुत ही दुखी हो गए। तो फिर उनके एक मित्र ने उनको बताया, यहाँ पर नीमाई पंडित करके एक पंडित आया है, आप उनके पास जाओ, वो सब कुछ जानते हैं, आप वो उनको आपको सब कुछ बताएंगे, ऐसे उन्होंने बता दिया। फिर थपन मिश्रा निमाय पंडित के पास जाते हैं और निमाय पंडित उनको सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं और वो ये भी प्रकट करते हैं कि कैसे वो स्वयं ही वेद शास्त्रों का सार है, कृष्ण है करके। तो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित उनको बोलते हैं, ये बात किसी को नहीं बताना कि मैं ही कृष्ण हूँ, तो आगे जाके मैं आपको मिलूंगा, अभी आप बनारस जाओ। तो फिर उनको बनारस ले लेते। तो ऐसा हो सकता है कि जीवन भर हम लोग वेदों को अध्ययन करें लेकिन सार ना समझे, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा। तो चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र को ही नहीं, वो बार बार वेदों के सार अलग अलग व्यक्तियों को उन्होंने वर्णन किया। सारभौम भट्टाचार्य को, सनातन गोस्वामी को और प्रकाशानंद सरस्वती और अन्य मायावादी गण थे, उनको भी वेद शास्त्रों के जो सार है उन्होंने बताया। तो वो कहते हैं कि तो वेद शास्त्रों का तीन, वेद शास्त्रों में तीन विषयों के बारे में वर्णन हुआ है। कोई बताएंगे कौन सा तीन विषय है? संबंध, अविधेय और प्रयोजन। तो यही तीन विषयों के बारे में वेद शास्त्रों में बताएगा। तो चैतन्य महाप्रभु बार 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 इसको बताते हैं ताकि हम लोग इसको समझ सके। What happened? So many places it was described. Why it is? No, I'm not getting it. चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। सो सनातन गोस्वामी के शिक्षा में जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया वहां पर वर्णन करते हैं। हम लोग उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवे रे कृपा को ले कृष्ण वेद पुराण। और इसके पहले भी वो भी चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहा था कहे थे। और उसके पहले भी आप देखिए सनातन गोस्वामी का क्या प्रश्न था। खे आमी खेने आमाय जा रे तापत्र ईहा ना ही जानी खे मने ही तो हया। मैं कौन हूं किसलिए मैं ये सभी तीन प्रकार के तापत्र त्रिविध ताप को अनुभव कर रहा हूं। ईहा ना ही जानी मुझे क्या अंत में हित होगा उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है ऐसे वो प्रश्न पूछते हैं। तो वास्तव में यहाँ पर वो तीनों विषयों के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं संबंध अभिधेय और प्रयोजन। फिर वो चैतन्य महाप्रभु जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटस्थ शक्ति वेदावेद प्रकाश। तो कि आपका स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास ये संबंध है। सो कृष्णेर तटस्थ शक्ति भगवान कृष्ण की आप तटस्थ शक्ति हो। सो वेदावेद प्रकाश मतलब आप भिन्न भी हो और अभिन्न भी हो एक ही साथ में। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। उस समय पर चैतन्य महाप्रभु एक दृष्टांत भी उन्होंने दिया। तो किसी को पता है क्या दृष्टांत दिया उन्होंने। एक सर्वज्ञ ब्राह्मण थे वो एक गरीब व्यक्ति के पास आए और गरीब व्यक्ति बहुत ही दुखी था वो। सो फिर ये सर्वज्ञ ब्राह्मण उनको पूछते हैं कि क्यों दुखी हो आप। तो वो गरीब व्यक्ति कहते हैं गरीबी के कारण बहुत सारे कष्ट मुझे सामना करना पड़ रहा है तो इसलिए मैं दुखी हूं ऐसे कहते हैं। फिर वो सर्वज्ञ ब्राह्मण कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पिताजी बहुत सारे धन संचय करके गए हैं तो क्योंकि वो दूसरे जगह पर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया इसलिए आपको पता नहीं है कि आपका धन क्या है मतलब उनका धन कहाँ पर है तो उसके बारे में जानकारी भी आपको पता नहीं है ऐसे वो कहते हैं। फिर उसके बाद में फिर कैसे उसको ढूंढना चाहिए वो बताते हैं। वो धन को उन्होंने आपके घर के आंगन में छिपा के गए हैं वो। तो फिर वो कहते दक्षिण बाग में खुदाई मत करो क्योंकि वहां पर एक सर्प है वो नहीं वहां पर एक सर्प है वहां पर एक राक्षस है यक्ष है तो वो आपको मार देगा। सो फिर पश्चिम दिशा में भी खुदाई मत करो वहां पर क्या है एक सर्प है वो आपको काट लेगा। तो और उत्तर दिशा में भी सो उत्तर दिशा में भी खुदाई मत करो वहां पर बहुत सारे वो ड्रोन्स पड़ते से ड्रोन्स वो मधुमक्खी के ही समान होते हैं लेकिन बड़े होते हैं ना जैसे ही होते हैं लेकिन बड़े होते हैं उसको क्या बोलते टिड्डे। सो वो हिंदी में ही चाहिए वो टिड्डे है वो सभी क्या कर लेंगे समझ में आ गए टिड्डे क्या है करके मधुमक्खी तो वो भी आपको क्या करेंगे, सब अटैक कर देंगे, ऐसे वो कहते हैं। सिर्फ पूर्व दिशा में आप क्या करो, खुदाई करो, फिर वहां पर आपको जो आपने आपका पिताजी ने धन इकट्ठा किया था वो सभी मिल जाएगा। सो फिर उसने पूर्व दिशा में खुदाई की, खुदाई करने के बाद उसका धन प्राप्त हुआ। सो धन प्राप्त करने से क्या हो गए, सभी कष्ट मिट गए। तो इस दृष्टांत में तीनों चीजों के बारे में चैतन्य महाप्रभु, ये दृष्टांत मध्वाचार्य ने अपने भागवत के तात्पर्य में दिया था, श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में चैतन्य महाप्रभु उसको दोहराते सनातन गोस्वामी को। तो इसमें संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तीनों वर्णन किया गया है। तो वो जब कहते हैं कि आपके पिताजी के धन के बारे में आपको पता नहीं, उसका अर्थ क्या है, हम लोग इस भौतिक जगत में आए हैं, भगवान को भूल गए हैं, हमारे भगवान के बारे में हमें ज्ञान नहीं, माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपा कहले कृष्ण वेद पुराण, ज्ञान नहीं है कि भगवान कैसे सर्व ऐश्वर्यशाली है, उनको भूल कर यहाँ पर हम लोग अनाथ बन के इधर उधर भागदौड़ कर रहे हैं कि धन इकट्ठा करो, वो करो, ये करो करके। सो ये सभी हमारे कष्टों का कारण है इस भौतिक जगत में, भगवान को भूल जाना, भगवान के बारे में ज्ञान ना होना, हमारे साथ भगवान के साथ क्या संबंध है वो भूल जाना। तो फिर अभी धन कैसे प्राप्त करना चाहिए, भक्ति करके ही हम लोग भगवान के साथ संबंध को स्थापित कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या खुदाई करना पड़ रहा है, तो अलग अलग वेदों में भी वो अलग अलग प्रक्रिया बताए गए हैं। वेदों में तीन खंड है, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्मकांड मतलब ऐसे कार्य करना, पुण्य कार्य करना या यज्ञ करना जिसके द्वारा हमें ऊंचा भौतिक स्थिति प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान कांड मतलब वो निराकार ब्रह्म का बारे में ज्ञान इकट्ठा करना वेद उपनिषदों के द्वारा, तो ज्ञान कांड, उपनिषद को ज्ञान कांड कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा निराकार ब्रह्म के बारे में वर्णन आता है उसमें, और वेदों में ज्यादा से ज्यादा कर्मकांड है, 99% वेद कर्मकांड है और 1% जो उपनिषद है, वेद उपनिषदों का, उपनिषद वेदों का ही भाग है, तो वो ज्ञान कांड है। और उपासन कांड का भी वर्णन आता है, उपासना कांड में भी दो चीज है, एक देवी देवताओं का उपासना करना, पुराणों में इसके बारे में वर्णन आता है, और अंत में उपासना कांड का अर्थ है भगवान विष्णु को आराधना करना, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम। तो ऐसे चार चीज है, चार प्रक्रिया, या भगवद गीता में भी कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति, ये भी वर्णन किया गया है ना। और दूसरा भगवान कृष्ण को, विष्णु का आराधना, अंत में वो उपासना कांड में भगवान विष्णु का ही आराधना बताया गया है। तो वेदों में ऐसे चीज बताए गए हैं, लेकिन तो कर्मकांड, कर्मकांड, ज्ञान कांड और देवी देवताओं का उपासना उसको त्याग देना चाहिए, वो यक्ष, सर्प और टिड्डे का समान है, या कर्म, ज्ञान और योग जो बताया गया है वो भी वैसे ही है। तो हमें भक्ति, सिर्फ भक्ति करना चाहिए या भगवान का आराधना करना चाहिए, तब जाके क्या हो जाता है, पूर्व दिशा में खुदाई करने के समान है वो, तब जाके क्या हो जाता है, वो धन प्राप्त हो जाता है। वो धन क्या है, प्रेम धन, बोलो केरा प्रेम धन, प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, भक्ति करने का वही फल है। तो इसलिए वो प्रयोजन है, भक्ति अभिधेय है, और हमारे साथ जो संबंध है, हमारा स्थिति भगवान का स्थिति है और बीच में जो संबंध है उसको संबंध कहते हैं। तो वेदों का यही सार है, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण बोली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देह संसार दुख। आपको पता है ना ये श्लोक, माया मुक्त जीवे नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्ते रसाधन। वो कहते हैं वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन। वेद शास्त्र क्या कहते हैं? वो संबंध अभिधेय और प्रयोजन, इसका वर्णन करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20 1 124। तो वेद शास्त्र कहे, वेद शास्त्र क्या कहते हैं? हालांकि बहुत सारा विषय है, लेकिन अंतिम उद्देश्य अंतिम सार क्या है? वो यही तीन चीज है, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्ति और अभिसाधन। सो कृष्ण के साथ संबंध जाना, उसको संबंध कहते हैं। सो कृष्ण को संबंध कहते हैं, या हमारे स्थिति कृष्ण का स्थिति और बीच में क्या संबंध है उसको संबंध कहते हैं। और भक्ति प्रातेर साधना, वो साधन क्या है उसको स्थापन करने के लिए, संबंध स्थापन करने के लिए वो भक्ति है। साधन जानते हैं ना, साधन का अर्थ है जो मार्ग दिया जाता है, जो प्रक्रिया दिया जाता है, वो भक्ति है। यहाँ पर जब हम लोग भक्ति बोलते हैं वो भगवान कृष्ण को ही है, और कुछ नहीं है। हम दुर्गा भक्ति, काली भक्ति या गणेश भक्ति ऐसे नहीं होता है। भक्ति मतलब कृष्ण भक्ति। तो फिर आगे वो वर्णन करते हैं 125वां श्लोक में, अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। अभिधेय नाम भक्ति, इस भक्ति को ही अभिधेय कहते हैं। और प्रेम प्रयोजन, प्रेम क्या है? उसका फल है, प्रयोजन है। और पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन, ये प्रेम क्या है? ये महाधन है। वो धन प्राप्त किया ना उस गरीब व्यक्ति ने, तो ये महाधन है, पुरुषार्थ शिरोमणि है ये। पुरुषार्थ शिरोमणि का क्या अर्थ है? मनुष्य जीवन में चार लक्ष्य होते हैं। सो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये चार मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। धर्म का अर्थ है कि हमारे गुण के अनुसार जो कर्म दिया गया है उसको पालन करना, उसको धर्म कहते हैं। ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसको पालन करने से क्या हो जाता है? हमें अर्थ प्राप्त हो जाता है। भगवदगीता में भी भगवान ने कहा ना, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो सभी जीव अन्न के ऊपर निर्भर है। अन्न बारिश से होता है, बारिश यज्ञ करने से होता है, यज्ञ कर्म को पालन करने से होता है। कर्म और धर्म एक ही चीज है। तो हमारे गुण के अनुसार जो वेद शास्त्र हमें कुछ कार्य करने के लिए बताते हैं उसको ही कर्म कहते हैं या धर्म कहते हैं। क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म, तो कर्म ऐसे होता है। तो पुरुषार्थ शिरोमणि ये धर्म है, धर्म को पालन करना, उससे हमें जो भी जरूरत है वो प्राप्त हो जाता है। उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? इंद्र तृप्ति कर सकते हैं। इंद्र तृप्ति मतलब यहाँ पे अनियंत्रित इंद्र तृप्ति नहीं, नियमित इंद्र तृप्ति। और अंत में ऐसे करते करते हम लोगों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्य जीवन में ये चार चीज प्राप्त करना है, तो इसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। ब्रह्मचारियों के लिए ये नहीं है, या जो ब्रह्मचारी ठीक है वो स्टूडेंट है, जो संन्यास लिया है वैराग्य को पालन किया, उनके लिए ये चार नहीं है, उनके लिए सिर्फ मोक्ष है। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते लक्ष्य है जीवन में, उसको प्रेम महाधन कहते हैं। प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत हो, ये मोक्ष से भी परे है ये। तो मोक्ष को भी ये तुच्छ बना देता है। तो इसको परम पंचम पुरुषार्थ, पुरुषार्थ शिरोमणि, इसको पंचम पुरुषार्थ कहा गया या पुरुषार्थ शिरोमणि कहा गया। तो ऐसे वेद शास्त्र यह संबंध अभिधेय प्रयोजन कहते हैं। तो क्योंकि भगवद गीता भी शास्त्र है, वेद शास्त्र है, और सभी वेद शास्त्रों का सार है, मर्म है, इसलिए उसका भी सार क्या होगा, संबंध अभिधेय और प्रयोजन है ना, वही भगवद गीता का भी सार होगा। तो हम पहले कुछ प्रभुपाद जी के तात्पर्य से देखेंगे कि कैसे कृष्ण संबंध है, फिर उसके बाद में भक्ति अभिधेय है, भक्ति और अंत में प्रयोजन। तो हम लोग ऐसे कुछ उल्लेख देखेंगे। 15वें अध्याय के 17वां श्लोक निकाले, 515 517 या द होल भगवद गीता सेंटर अराउंड यू आर सीइंग देयर। तो वहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो वहां पर प्रभुपाद आरंभ ही करते, देखिए क्या आरंभ करते हैं, परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण है, सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण भगवान है। तो सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है, व्हाट इज द सेंट्रल पॉइंट, सो सेंटर्स अराउंड द डिक्लेरेशन दैट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, दैट इज द वर्शन ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर, यही समस्त वेदों की भी, वेदों का भी अभिमत है। जैसे बता रहे थे ना हम, सभी वेद शास्त्रों का सार है कृष्ण भक्ति और प्रेम। तो यहां पर भी भगवद गीता कृष्ण को ही परम सत्य करके घोषणा करती है। परतत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में जानने वाले द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परतत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, दिस इज समथिंग इन इंग्लिश आई थिंक इट इज डिफरेंट, ही इज द बेसिस आई थिंक translated it as, therefore is always, Brahman is also supported by Krishna, it should not be anumodan, it should be he is Adar or something like that, you know, so it's it gives completely impersonal idea, no? Right? So note down this, we can later suggest to them. Who is doing all these things? They are running around here and there, people. Huh? We have to note down and make list of all the changes. Okay. This. अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य परतत्व है। तो ये सेंट्रल पॉइंट गीता का केंद्र है, केंद्र या गीता इसके ऊपर केंद्रित करता है, भगवान कृष्ण ही परम सत्य है कर। फिर 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, द लास्ट वर्स ऑफ भगवद गीता, भगवद गीता का अंतिम श्लोक निकाले, वहाँ पर तात्पर्य में चौथा पैराग्राफ देखिए, भगवद गीता का अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति तीन रूपों में होती है, निर्गुण ब्रह्म। तो भगवद गीता का क्या विशेषता है? है कि वास्तविक, अनदर फीचर ऑफ भगवद गीता, हियर ऑल्सो फीचर मीन्स विशेषता। फीचर भगवदगीता का अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति तीन रूपों में होती है, निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश है ना। संबंध ज्ञान भी कहते हैं इसको, है ना। तो इसमें ही क्या होता है, भगवान कृष्ण ही संबंध ज्ञान है। क्यों ये हमारे बारे में क्यों नहीं बताया गया जीव के बारे में? क्योंकि जीव क्या है, भगवान के तटस्थ शक्ति है। हाँ, वेदा वेद प्रकाश है, सिर्फ कृष्ण बोल दिया तो काफी है। जैसे हम लोग संबंध ज्ञान का इसका क्या अर्थ बताते हैं, हमारे और भगवान के बीच में संबंध ज्ञान, उसको संबंध कहते हैं हम लोग। लेकिन कृष्ण काफी है, क्योंकि कृष्ण बोले तो जीव भी आ जाते हैं। जीव का शक्ति, कृष्ण की शक्ति जीव है। कृष्ण की शक्तियों का वर्णन सब कुछ संबंध ज्ञान का ज्ञान में आता है। तो कृष्ण दिव्य है क्योंकि वे अपने नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनके शक्ति से प्रकट है। यहाँ पर बोल देखिए जीव के बारे में बता रहे हैं। और दो श्रेणी के होते हैं, नित्यबद्ध तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं, है ना। यहाँ पर संबंध ज्ञान को दिया जा रहा है, संबंध ज्ञान ही दिया जा रहा है ना। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। ये सब कुछ संबंध ज्ञान में आता है, कृष्ण में आता है। कृष्ण और कृष्ण के शक्तियों का ज्ञान, उसको संबंध ज्ञान कहते हैं। फिर अभी हम लोग कुछ अभिधेय अठारहवें अध्याय के 64वां श्लोक लिखा लिए। क्या बोल रहे हैं वहां पर भगवान, क्या श्लोक है वो? So most confidential knowledge, essence of all essences, essential knowledge. चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। So, अर्जुन को गुह्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्य तरक ज्ञान, परमात्मा ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान, प्रोसेस ऑफ सरेंडरिंग टू द लॉर्ड। ये क्या है? भक्ति है ना। नवे अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, मन मना सदैव मेरा चिंतन करो। इसको अभिधेय कहते हैं, इसको ही मार्ग या प्रक्रिया कहते हैं, साधन कहते हैं इसको, भक्ति। उसी आदेश को यहां पर भगवद गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो कृष्ण के सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण के शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। है ना, सार, सार शब्द आता है ना, एसेंस, नो, यह सार सामान्य जन समझ में नहीं आता। सारे वैदिक साहित्य में यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश, ये सभी वैदिक साहित्यों का भी सार है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। पालन करना, पालन करना मतलब यहां पर साधन कर। सार तो हम लोगों ने देखा, कृष्ण भगवान भी सार है, और यहां पर इसको भी साधन सार कह रहे हैं, लेकिन यहां पर साधन पालन करना है, ये अभिधेय है, तो अभिधेय सार। तो वो क्या है अगला श्लोक में, वही मनमना दोहराया जा रहा है जो नवे अध्याय के अंत में बताया, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। सो दे सार है, सेंस। तो चिंतन करो, कैसे चिंतन करेंगे, हमेशा भगवान का नाम का उच्चारण करना है, उनके भक्त बनेंगे, अलग अलग उनको सेवा करेंगे, उनका आराधना पूजा करेंगे। प्रभुपाद कभी कभी बोलते थे कम से कम एक बार आके, एक दफे आके दंडवत तो करो, लाइक दैट, ऐसे कहते थे। तो ये साधन है, ठीक है। और वी मिस्ड वन पॉइंट इन 78, फिर से वो अंतिम श्लोक खोले, वहां पर एक और चीज पढ़ना था। फ्रॉम भगवद गीता वी कैन अंडरस्टैंड दैट टू रियलाइज वन सेल्फ बाय फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। हाँ, ये तीसरा पैराग्राफ भी वहां पर भी पढ़ना। भगवद गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपने अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवद गीता के उपदेशों का सार है। यहाँ पे फिर से सार है ना, शब्द आता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों का मार्ग ज्ञान का बुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठानों के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर है, तथा पूर्ण कृष्ण भावनामृत होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है, क्योंकि 18वें अध्याय भगवद गीता का सार है, इसलिए उसका सार क्या है, भगवान को शरण में जाना या भक्ति के प्रक्रिया को करना। तो मनमना भव मद भक्तो मद्याजी नमस्करो, तो फिर तो ये अभिधेय हो गया, और प्रयोजन के लिए कहां पर वर्णन है अभी वो देखेंगे हम लोग। तो 10वें अध्याय के 11वें श्लोक देख खोले, प्रभुपाद वहां पर दोनों बताते हैं, अभिधेय और प्रयोजन दोनों बताते हैं। परम उद्देश्य ज्ञान ऐश्वर्य, हाँ वो अंतिम पैराग्राफ देखिए।